कुल कह दीजिए, ए नबी आप इनसे कह दें। आ उन नबी हुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं? अहम खबर, क्या ये आता है ना नबा, जैसे हम कहते हैं, वैसे तो खबरें लगती हैं लेकिन जूं ही आता है ब्रेकिंग न्यूज तो हम फौरन अलर्ट हो जाते हैं, क्या ब्रेकिंग न्यूज आ गई, अहम खबर, फौरन चलने लगता है। तो बहुत अहम खबर है, क्या भी खैर मिन ज़ालिकुम, बेहतर इससे। इंसान सोचता है अच्छा, ज़ालिकुम, कुम की जमीर किस तरफ जा रही है, कुम यानी इन सारी चीजों, ये जो छह सात चीजें बताई गई है ना, इन सबसे बेहतर, जितनी ख्वाहिशात हैं इनकी, जो मोहब्बत है, सबसे बेहतर चीज ना बताओ। बंदा एक्साइटेड हो जाता है, अच्छा इससे भी कुछ चीज अच्छी हो सकती है, मुझे तो यही चीजें बड़ी अच्छी लगती है, इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, हाँ इससे भी अच्छा है। लेकिन वो लिन्नास नहीं है, लिल्लदीन तकौ है, सबके लिए नहीं है, वो तो सबकी थी ना, सबके लिए मुजयन कर दी गई थी, ये है तकवा वाले के लिए, लिल्लदीन तकौ इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, रब के पास, वरना ये भी हो सकता था लिल्लदीन तको जन्नातुन तजरी, लेकिन जब कह दिया गया ना रब के पास, तो वो जैसे बीबी आसिया की दुआ याद है, रब इब्नी लिया इंदक बैतन फिल जन्ना, है मेरे रब अपने पास जन्नत में मुझे घर अता फरमा। तो अल्लाह के पास होने की बात ही अलग है कि अल्लाह के करीब होना, अल्लाह के कुर्बत, और जो कुर्बत सबसे ज्यादा किनको मिलेगी, जो जन्नतुल फिरदौस में होंगे, जो सबसे आला जन्नत है, जिसका छाती अल्लाह की, अल्लाह ताला का अर्श है, तो इंदा रब्बी, उनके रब के पास। अच्छा जन्नत को भी छोड़ देना, जब इंदा रब्बी हम आता है तो अल्लाह के पास होने का एहसास इंसान को कितना सूद करता है, अल्लाह के पास हो जाऊंगा, और वहां पे क्या है, जन्नात, एक जन्नत नहीं है, बहुत सारे बागात हैं, तजरी मिन तहती अल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, नहरें होंगी, ऐसे बाग होंगे, बाग क्यों कहा, वहां पे तो महल्लात भी होंगे, वहां पे तो नहरें भी हैं, वहां पे तो और भी कई चीजें हैं, खेमे भी हैं, तो जन्नात ही क्यों कहा गया, एक तो अरबों को ना बागात बहुत महबूब थे, ठीक है, और दूसरी चीज ये है, हर इंसान के अंदर आप देखें एक, ये पता नहीं, एक फितरी सी अल्लाह तला की तरफ से ये चीज है, उसको ग्रीनरी बड़ी पसंद आती है, आप देख लें कितना भी महल हो लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है, मट्टी धूल उड़ रही है, तो आपको अच्छा लगता है वो, कोई हर इंसान अट्रैक्ट होता है ग्रीनरी से, आप सैर के लिए भी कहीं जाते हैं तो आप वो जो कैलेंडर्स में तस्वीरें देखते हैं, या कहीं आपने वेकेशन पे जाना है, आप कौन सी जगह चूज करते हैं जो ग्रीन होती है, ग्रीनरी वहां पे बड़ी है, फिर पानी के झरने हैं, ग्रीनरी, स्विट्जरलैंड को देखते हैं तो क्या चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं वहां की, ग्रीनरी, ग्रीन है पहाड़, ग्रीन, तो इसलिए जन्नात कहा गया, समझ आई, जन्नत क्या है, बाग, और बाग में ग्रीनरी होती है, तो अब समझ आ गई कि क्यों कुराने पाक में जन्नत कहा गया, क्यों नहीं ये कहा गया अल्लाह के पास मोहल्लात होंगे, अल्लाह के पास वहां पे नहरें होंगी, तो हमेशा जन्नत क्यों कहा जाता है, और फिर जन्नत उस बाग को कहते हैं, एक बुस्तान भी बाग को ही कहते हैं, लेकिन जन्नत वो बाग होता है जिसकी बाड़ होती है, और जो छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आता, ये जन्नत भी नजरों से ओझल है, इसमें नहरें बह रही होंगी, और किस चीज की नहरें होंगी, पानी की भी होगी, दूध की भी होगी, शहद की भी होगी, शराब की भी होगी, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहने वाले, हम अब कहीं ऐसी किसी जगह पे चले जाना जो बड़ी अच्छी हो दुनिया में, आए तो जब वहां से आने लगते हैं तो कहते हैं आए काश यहीं पे हमारा घर होता, कितना मजा आता ना, कि का यहीं पे कहीं किसी तरह, यहाँ पे नहीं हम मूव हो सकते, लेकिन हम नहीं हो सकते वहां पे, हम वेकेशन पे जाते हैं थोड़े दिन बाद वापस आ जाते हैं, घर नहीं बना पाते वहां पे, लेकिन जन्नत वो जगह है, खालिदीन फिया, देखो कोई निकालेगा नहीं वहां से, सबसे मजे की ये बात है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो मता नहीं है, वो खालिदीन फिया, वह अजवाज मुतहरतुन, और बीवियां या जोड़े पाकीजा, मर्दों के लिए जो बीवियां होंगी वो ऐसी होंगी जो पाक होंगी, पाक कैसे, जिस्मानी तौर पे भी पाक, यानी ना पसीना है, ना नाक बहती है, ना आंखों में कोई कीचड़ आता है, ना कोई फालतू बाल होते हैं, ना कोई इस तरह की कोई चीज नहीं, साफ सुथरी पाक, और दिलों में भी पाक, دلوں میں حسد نہیں، کینے نہیں، جھگڑے نہیں آدمی کے ساتھ، زبان بھی پاک، زبان پہ شکوے شکایت نہیں، زبانوں کے اوپر تانے نہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں جو دوسرے کو تکلیف دینے والی ہوں. اور اسی طرح پاک میں یہ بھی ہے کہ کوئی خیانت نہیں کرتی، کیونکہ وہ اور بھی کوئی آدمی ان کو اچھے لگنے لگے جنت کے، ان کو بس اپنا ہی شوہر اچھا لگتا. پاک بیویاں، اب دیکھ لینا یہ کیوں دی گئی، اس لیے کہ آدمی کو سب سے زیادہ محبوب میں پہلی چیز کیا تھی؟ نساء. عورتوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ کیوں ان کے لیے کیوں ایسی بات، آپ دیکھیں اس کے لیے تو سب سے بڑی اٹریکشن ہی وہی تھی، وہ دنیا میں بچ کے آیا اس سے کہ اللہ مجھے جنت میں دے گا، تو اس کے لیے وہ ریوارڈ ہونا چاہیے نا، وہ چیز جو اس کے دماغ پہ چھائی رہتی تھی ہر وقت، اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا وہاں حرام سے. وہ ساری چیزیں حلال کے اندر جائز ہیں، حد کے اندر جائز ہیں، مگر جہاں پہ وہ، میں نے آپ کو بریک والی مثال بتائی نا، جہاں پہ بریک نہیں لگے گی نا، حد سے نکل گئی، وہاں پہ وہ ساری چیزیں انسان کے لیے مصیبت ہے، تباہی ہیں یہ محبتیں. پھر ورضوان من اللہ، سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے نا، وہ تو ہے رضا اللہ کی. پہ ایک دو معنی اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں کہ ایک تو اللہ راضی کر دے گا انسان کو، رضوان یعنی رضا مندی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ رضا مندی دے دے گا انسان کو کہ انسان راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا اس کو مل جانا، یہ بھی دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی. اور دیکھیں اللہ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری جنت ایک طرف ہے اور اللہ کی رضا ایک طرف ہے. اور یہ سمجھنے ایسے ہے کہ مثلا آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، تو ساری دنیا آپ کی تعریف کر لے، وہ ایک طرف ہوتی ہے، اور آپ کے ماں باپ، خاص طور پہ والے ماں باپ جو کہ کبھی تعریفیں، پہلے زمانے میں ایسے ہی ماں باپ ہوتے تھے جو بچوں کی بالکل کوئی، اب تو تھوڑی پھر بھی اویئرنیس آنے لگی، جو کوئی بچوں کی کبھی تعریف نہیں کرتے تھے، تو ساری دنیا آپ کی تعریف کر دے، لیکن ایک طرف وہ ہے کہ ماں باپ کہہ دیں آئی ایم پراؤڈ آف یو، تو وہ جو ماں باپ نے کہہ دیا نا، وہ انسان کے لیے اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اچھا میرے ماں باپ نے یہ کہہ دیا، وہ ساری لوگوں کی تعریفیں بھول جاتا ہے. یہ بچے ہی نہیں، صرف بڑوں تک کے لیے یہ ہے کہ جب ماں باپ ہوتے نا، تو ان کا ایک بات کہہ دینا، ان کی تعریف کر دینا، ان کا شاباش دے دینا انسان کے لیے بہت بڑی کام ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب اللہ تعالی خوش ہو جائے گا اور شاباش ملے گی نا، تو وہ کیا حال ہوگا پھر، وہ کیا بات ہوگی پھر اس کی، اس شاباش کی، کہ انسان یعنی اس کا کمپیریزن کسی اور نعمت سے ہو ہی نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، اے جنتی لوگوں، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، لبیک وسعدیک، ہم حاضر ہیں، ہم تیری جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تم راضی ہو، تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اللہ ہم راضی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ نے ان کو رضا دے دی نا، وہ راضی ہو گئے، ہم راضی کیوں نہ ہو، تو نے تو ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں عطا، اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، ہم کیسے نہیں خوش ہوں گے. یعنی وہ اتنے خوش ہوں گے وہاں پہ، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ اب کچھ اور ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا ہوتا. جیسے دنیا میں تو یہ چیز کبھی سیٹسفیکشن ہوتی ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ انسان سیٹسفائی ہوگا، کنٹینٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز نہ عطا فرماؤں. وہ کہیں گے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ اچھی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ ہے رضوان من اللہ. اور رضوان من اللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے، اس لیے، لیکن اس کے لیے یہ جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہو، جس نے ہمیشہ دنیا کے اندر یہ سوچا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے آپ کی بہت ڈیزائر، جس دن آپ کو وہ حاصل ہو جاتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ کے مثلا آپ کا پیشن ہے، آپ کی ساری زندگی کا گول ہے کہ آپ کوئی ڈگری حاصل کر لیں، جب وہ ملتی ہے تو وہ گریجویشن کے دن حال کیا ہوتا ہے پھر. اس طرح جس کا زندگی کا محور یہ تھا نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس उसके लिए सोचें कि कितनी बड़ी खुशी की इंतहा होगी कि अच्छा अल्लाह राजी हो गया मुझसे। और अगर आप ये समझते, लोग बहुत दफा क्वेश्चन भेजते हैं और कहते हैं कि कैसे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है, होती है ना एक दिल के अंदर, पता नहीं हम जो काम कर रहे हैं पता नहीं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई इसमें गलतियां हो रही हैं, कोई रियाकारी तो नहीं हो गई, हाय साया तो नहीं हो गया, पता नहीं अल्लाह खुश भी है हमसे कि नाराज तो नहीं है, पता नहीं हमारा मकाम क्या है अल्लाह के पास। तो कोई दुनिया में तरीका नहीं है कि आप जान सकें कि हाँ अल्लाह मुझसे राजी ही है 100%। हाँ उलमा ने कुछ बताई है कि हाँ ये हो ऐसा हो तो वो, लेकिन वो मतलब एक निशानियां कह सकते हैं, लेकिन कंफर्म किसी का नहीं पता चल सकता कि अल्लाह उसे राजी है, ये कंफर्मेशन तो वहीं जाके मिलेगी। और ये उसके लिए कितनी बड़ी ये बात होगी कि अल्लाह कभी मुझसे नहीं नाराज होगा। सहाबा में तो हजरत उस्मान, सुबहान अल्लाह कितने खुशकिस्मत है ना, तबूक में जब वो अपना माल लेकर आए थे और फिर लेकर आए और फिर लेकर आए और फिर लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हो रहे थे कि उन्होंने जो दिए थे अशरफियां, जो दीनार या दिरहम जो भी थे, उनको उलट पुलट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे और फरमा रहे थे आज के बाद उस्मान कुछ भी करे उसको जरर नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, आज के बाद कुछ भी करे यानी अल्लाह राजी हो गया। आप वो तो वो लोग थे जिनको अल्लाह की रजा मिल गई, हमारे में से कोई नहीं कह सकता अल्लाह राजी है हमसे, किसी का भी नहीं, आप देख के किसी का नमाज रोजा देख के किसी का कुछ नहीं आप देख के कह सकते, हम नहीं जानते दिलों के हालात क्या है। तो रिदवान उम्मीन अल्लाह, वो जो उसकी प्यास थी ना, जो उसकी तलब थी, जो उसकी हमेशा की एक तड़प थी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, वो आज उसको मिलेगी कि अल्लाह राजी हो गया, अब नाराज होना ही नहीं उसने। और यहां पे दुनिया में कितना डर लगता रहता है पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाना, या अल्लाह हमें भी अता फरमाना, या अल्लाह हमारे भी कान ये सुने कि तू हमसे राजी हो गया और कभी नाराज नहीं होगा, हम भी उन खुशकिस्मतों में से हो। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह देखने वाला है अपने बंदों को, अल्लाह देख रहा है तुम्हारी सारी कोशिशों को, तुम्हारी सारी मेहनतों को, तुम्हारी सारी एफर्ट्स को, अल्लाह की नजर में हो तुम। असल में इंसान जो है ना, उससे अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने इंसान को अजूला पैदा किया, उजलत पसंद, जल्दबाज, वो कहता मैं वेट क्या करूंगा जन्नत का, मैं यहीं पर बस मुझे जो मिलना मिल जाए, मेरे से नहीं वेट होता, हालांकि सबर करेगा तो वो वहां पे कितना कुछ पा सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम अल्लाह की नजरों में हो, अब देखे अल्लाह की नजरों का एहसास इंसान को जो नेकी कर रहा है उसके लिए खुशी का बायस है कि अल्लाह तो देख रहा है ना मुझे, मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, कंप्यूटर खोल रही हूँ, मैं अपनी किताबें खोल रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ हराम से बच रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को कैसे कैसे, मेरा दिल भी चाह रहा है लेकिन मैं बचा के रख रही, वो तो खुश होगा लेकिन जो गुनाहों में पड़ा वो भी याद रखे। अल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, जो इन्हीं टेम्पटेशंस के अंदर ही खुबा हुआ है वो भी याद रखे, अल्लाह देख रहा है उसका कि उसका दिल किधर को लगा हुआ, उसके दिल में किस चीज की मोहब्बतें हैं, वो किस चीज के पीछे दीवाना हुआ फिर रहा है, अल्लाह को सब के ऊपर नजर है उसकी, कौन किस दौड़ में है, कौन किस रेस में है, इस रेस में हो जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार की, रिदवानुम मिन अल्लाह की, या उस रेस में हो शहवात की। और शहवात का याद रखिए कोई एंड नहीं होता, एंडलेस होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और यहां पे सेटिस्फेक्शन है, कोई कंपेयर करना चाहे तो दोनों आयतों को कंपेयर करे, दोनों की चीजों को कंपेयर करे और देखे कि उसमें क्या मिलता है और इसमें क्या है। ये जो इल्म वाले हैं, जो इल्म में रसूख हासिल करना चाहते हैं, रासिखूना फिल इल्म, वो बैठ के इस तरह की चीजें करते हैं, वो सिर्फ फिर इतने से सेटिस्फाई नहीं होते, वो और डेप्थ में जाते हैं। अच्छा अब ये कौन लोग हैं जिनको ये मिलेगा, उनकी तो जिंदगी बन गई ना, कहते हैं ना कामयाब लोग, पर इसने कमाई कर ली, कौन है वो लोग, अल्लाह ताला ने अब उनकी बात बताई है, अल्लाह दीन तकाऊ से सिर्फ नहीं, अल्लाह दीन तकाऊ तकवा क्या होता है, तकवा ये है कि इंसान اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کی محبت میں نیکیاں کرے. بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں, بچ بچ کے چلے. تو بچنا یہاں پہ کس سے؟ دنیا کی چکا چوند میں گم نہ ہو جائے, کہ اس کے اندر ہی نہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے اپنے آپ کو. اب صرف اتنی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے اور بھی ان کی کچھ کوالٹیز بتائی تاکہ ہمیں پتا ہو نا. تو اب ہمیں جب خواہش ہے دل میں آ گئی کہ ہمیں بھی اللہ یہ مل جائے, تو صرف دعاؤں سے نہیں یہ بات بنے گی, ہم آگے دیکھیں یہ لوگ ہیں کیسے. مجھے بھی ایسا بننا ہے, مجھے بھی یہ چاہیے جنت, مجھے بھی رضوان من اللہ چاہیے. کیسے پاؤں اس کو؟ کوئی طریقہ ہے؟ ہاں طریقہ ہے, اللہ نے بتا دیا. الذین یقولون, وہ لوگ جو کہتے ہیں. اچھا یہ اب کیسے لوگ ہیں جن کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ دعا جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے اس کی عکاس ہوتی ہے, یعنی آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے دعا کے ذریعے. اب دل میں اگر دنیا ہے تو بس دنیا ہی دنیا, وہ جو انسان ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا, جو بس کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, بس مجھے دنیا دے دے اللہ, یہ دے دے یہ دے دے, کاروبار فلاں یہ, بس اس کا یہی چیز. اور کوئی لوگ ہیں ان کی دعائیں کیسی ہیں؟ یقولون ربنا اننا آمنا, اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے. ایمان کس پہ لے آئے؟ اللہ پر, فرشتوں پر. ہم نے ایمانیات کی بات کی تھی نا پہلے, کتابوں پر, رسولوں پر, تقدیر پر, سب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا, اللہ تجھ سے التجا ہے, اب تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا اللہ, ہمارے گناہوں کو بخش دینا اللہ. اب ان کو نا اپنے گناہوں سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ گناہ تو مجھے ڈبو دیں گے, اللہ مجھے تیری مدد چاہیے, تو میرے گناہوں کو مٹا دے. واقعنا عذاب النار, ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ بس آگ کے اب عذاب سے بچا لینا. اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں, اللہ ہمیں پتہ ہے جہنم برحق ہے, جنت برحق ہے, قیامت کا دن برحق ہے. اللہ تعالیٰ تیرے وعدے حق ہیں, یا اللہ تو ہمیں آگ سے بچا لینا. تو یعنی ان کا غم کیا بن جاتا ہے؟ ان کا غم ہے کیا کہ یہ گناہ جو ہمارے اوپر ہیں یہ ہمیں ڈبو نہ دے, ہائے گناہوں کا بوجھ. وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں پھر, اور وہ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے التجائی کرتے ہیں کہ ہمیں بچا لے. سبحان اللہ. اور ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں؟ اب یہ کچھ کوالٹیز بتا دی گئی, پانچ کوالٹیز ہیں یہ بتا دی گئیں, اور یہ چھٹی ان کی یہ دعا ہے. وہاں پہ بھی چھ چیزیں تھیں نا, یہاں پہ بھی چھ چیزیں بتا دی گئیں. یہ کوالٹیز وہ ہیں کہ کسی کے اندر یہ ضروری نہیں کہ ساری پیک پہ ہوں, بلکہ کسی میں کوئی ایک زیادہ ہو سکتی ہے, کسی میں کوئی ایک کم. جیسے میں نے آپ کو شہوات کا بھی بتایا, کوئی ایک زیادہ ہوگی کوئی ایک کم ہوگی, یا یہاں پہ بھی کوئی مے بھی صبر میں زیادہ ہو, کوئی میں بھی سچائی میں بہت زیادہ ہو, کوئی میں بھی اطاعت گزاری میں بہت زیادہ ہو. تو ہر ایک کی ڈفرینٹ وہ ہو سکتی ہے کہ کون کتنا کس والے فیلڈ میں بہت آگے پہنچ گیا. الصابرین, صبر کرنے والے. سب سے پہلی بات ہی صبر کرتے, کیونکہ کوئی نیکی ہو نہیں سکتی صبر کے بغیر, گناہ سے بچا جا نہیں سکتا صبر کے بغیر. غالباً میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ صبر کتنی قسم کا ہوتا ہے, پتا ہے آپ کو؟ صبر تین قسم کا ہوتا ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا. صبر ویسے ہوتا کیا؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نیگیٹو چیزوں سے, روک لینا, تھام لینا خود کو, آپ پہ سے باہر نہیں ہوتے جانا کہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے خوشی ملے چاہے غم ملے, خوشی میں بھی صبر چاہیے. کنٹرول کرو خود کو, یعنی کہ ناچنے کھڑے ہو گئے, یعنی کہ دیوانے ہو گئے, پاگل ہو گئے, خود کو سمجھ لیں بریک لگانے کا نام صبر ہے. تو صبر استقامت کو بھی کہتے ہیں, چلتے رہنا. تو صبر جو تین قسم کا ہے اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں. پہلا صبر کیا ہے؟ نیکی پہ جم جانا, جم جانا نیکی پہ. یعنی کہ ایک دن کیا, دو دن کیا, رمضان میں بہت جوش آیا, بڑا کچھ کیا, اس کے بعد بھی سوچا بھائی کریں گے بڑا, اس کے بعد کچھ یاد ہی نہیں ہے. اس کے لیے صبر چاہیے, جم جانا. انسان اس پہ استقامت رکھے, انسان برداشت کرے جو کہ مشکلیں ہیں اس راستے میں. مثال کے طور پہ تہجد کے لیے اٹھنا, پہلے بھی تو سحری کے لیے اٹھتے تھے, लेकिन अब नींद बहुत आ रही है। इंसान बर्दाश्त करे ना, उठे फिर अपने आप को उठाए, तो नेकी पे जम जाना ये सबर है। इसी तरह गुनाहों पे भी सबर होता है। नंबर 2, यानी जो गुनाह करने का आपका जी चाहता है, आप नहीं उसको करते, रोक लेते अपने आप को, बांध लेते हैं, नहीं मैंने नहीं करना, ये भी सबर है। इसमें मजा आता है मुझे, लोग भी सारे कर रहे हैं, ये तो आजकल बहुत इन है, ये कौन सी बिग डील है। चाहे कितने भी ऐसे ख्याल आते हैं, मगर इंसान खुद को रोके किस लिए? इसलिए नहीं कि वो आपकी हेल्थ के लिए बैड है, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए नहीं कि फिर मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह को नहीं ये पसंद, इसलिए कि अल्लाह को नहीं ये पसंद, इसलिए नहीं कि ये लोग कहेंगे अच्छी कुरान पढ़ने वाली है, इसने तो हिजाब भी नहीं लिया हुआ, तो मैं जल्दी से ले लेती, किसी ऐसी जगह जाऊंगी जहां पे ये लोग नहीं होंगे तो फिर उतार दूंगी, ये फिर वो सबर नहीं है। गुनाह से बचना अल्लाह ताला के लिए। अब आजकल ना बहुत सारी चीजें आप देखें, इतनी गुनाहों की जो अल्लाह की नाफरमानी की है, इतनी कॉमन हो रही है, कॉमन हो रही क्या हो चुकी हैं, कि वो बुराई बुराई नहीं लगती। ऐसे में इंसान के लिए वाकई बहुत ज्यादा सबर चाहिए कि वो अपने आप को बांध के रखे कि सारी दुनिया कर रही है, मैंने नहीं करना, बस वो भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, लेकिन मुझे नहीं करना। क्यों? इसलिए कि ये गुनाह है, अल्लाह ने इसे मना किया है, मुझे इसे बाज रहना। अब बेशुमार ऐसे काम है, कुछ आपको मिसाल दो, वैसे तो आप बहुत सारी मिसालें, आपने रासिखूना फिल इल्म बनना है तो आपने बहुत सारी मिसालें अपने इर्द गिर्द नोट करनी है, अपने पास नोट करनी है, कौन सी वो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं सबर नहीं कर पाती। लेकिन आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, जैसे बाहर बंद समर के निकलना, सब निकलते हैं ऐसे ही, सब पूरा पूरा अपने आप को रखते हैं इस तरह टिप टॉप और फिर जाते हैं बाहर, तो मैं क्यों रुकूं? अब यहां पे आएगा सबर। अगर सबर होगा ना तो फिर इंसान कहेगा नहीं, अल्लाह की नाफरमानी है। सारे लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं, आप कहते हो सारे ही डालते हैं, इसमें क्या बात है? अल्लाह ताला ने तो औरत को छुपी हुई चीज बनाया, जितना ज्यादा इसको छुपाओ उतना बेहतर है। ये नहीं कि अपनी नुमाइश करो, अपनी तस्वीरें लगा के उन जगहों पे कि जहां पे वो सबके लिए ओपन है, कोई भी जूम करे वो शायद आपके चेहरे को कोई आदमी वैसे तो ना इतने गौर से देख सकता हो कि डर जाएगा कि पता नहीं कोई थप्पड़ी ना मारते, लेकिन वो कंप्यूटर पे जूम करके देख सकता है, आपके सारे फिगर को देख सकता है, आपके ने पूरा बन संवर के अपनी पिक्चर्स लगाई हुई है, सबको देख सकता है, कितना कॉमन है ना ये, तो क्या बुराई है इसके अंदर, सभी तो करते हैं, सब सब कर रहे हैं ना, तो ये तो बुराई ही नहीं रही फिर। सब करने से बुराई की बुराई होना खत्म हो जाए, ये नहीं होता। बुराई वो है जो अल्लाह ताला ने जिसको नापसंद किया, जिसको अल्लाह ने मना किया। हम सोचते हैं बुराई वो है सिर्फ जिसको माशरा कह दे कि ये बुरा, जिसको माशरा एक्सेप्ट कर दे ना वो तो बुराई ही नहीं है। हम बुराई को किस पैमाने से देखते हैं, खुद बताएं, किससे नापते हैं, क्या एक्सेप्टेबल है माशरे में, वो अच्छाई है हमारे नजदीक, चाहे वो कितना ही गलीज काम हो, और क्या है हमारे नजदीक जो कि बुरा है, वो बुरा है जो लोग जिसको बुरा कहते हैं। अब जिन चीजों को लोग नहीं बुरा कहते, हमारे नजदीक भी नहीं वो बुरी, अल्लाह ताला जो भी कहता रहा, क्योंकि मेरे पैमाने ही नहीं है वो, फिर मेरा क्राइटेरिया ही वो नहीं रखा जो कि अल्लाह की पसंद या नापसंद का हो। कि फिर हम ख्वाहिशात करते हैं रिदवानों मिन अल्लाह की जन्नातुन तजरी मिन तहती अल अनहार की, जबकि हमने अपनी जिंदगी का क्राइटेरिया ही वो नहीं बनाया कि अल्लाह ने किसको पसंद किया और किसको नहीं किया, अल्लाह क्या बताता है, हमारी पसंद में या नापसंद या जायज या नाजायज या बुराई या भलाई, या तो हमने खुद डिसाइड कर लिया होगा जो हमारे दिल में आता है, या लोग डिसाइड करते हैं, जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं। तो सबर, उस वक्त सबर करना, और फिर तीसरा सबर तो आपको पता है, अजियत के ऊपर, मुश्किलों में सबर करना, मसाइब में सबर करना, हालात में अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं उसमें सबर करना, वावेला नहीं मचाते फिरना, शोर नहीं मचाते फिरना, दुहाइयां नहीं देते फिरना, शिकायतें नहीं करते फिरना। वलकानितीन, और कुनूत करने वाले, इताअत गुजार, एक तो होता है वैसे भी इताअत गुजारी होती है ना, नहीं सॉरी, सादिकीन, सादिकीन रह गया, सादिकीन सच्चे, वो जो अपने आप से भी सच्चे हैं। बाज लोग तो अपने आप से भी सच नहीं बोलते, अपने आप को भी एडमिट नहीं करते कि ये मेरे अंदर बुराई है, ये मैंने फिक्स करनी, नहीं नहीं ये ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं करती, नहीं मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, तो खुद से तो सच बोल लो, नहीं मेरे अंदर तो कोई ये मोहब्बतें है ही नहीं है, मैं तो बस, मेरे अंदर कोई लालच ही नहीं है मेरे अंदर। अपने आप से ही अगर सच नहीं बोलोगे तो अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? हम अपने आप से नहीं सच बोलते, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, अपने आप को भी झूठी तसल्लियां देते हैं, कितनी बुरी बात है। दूसरों से तो झूठ बोला, अपने आप से भी झूठ बोला, कम से कम हम अपने आप से तो सच बोले, अपने आप को तो खुद आईना दिखाएं कि ये है सच्चाई, ये है मेरी हकीकत। फिर इसी तरह इंसानों से सच बोलना, इंसानों में सच्चाई, देखे एक जुबान पे भी झूठ होता है और एक जिंदगी भी झूठी होती है। जिंदगी कैसे झूठी होती है? जब वो आप बन बन के दिखाते हैं जो आप नहीं है, वो झूठी जिंदगी है, वो रियाकारी ही है, वो आप अपने आप का दिखावा करते हैं। तो लोगों से भी झूठ ना बोले, जिंदगी भी झूठी ना गुजारे, जुबान पे भी झूठ ना रखे, अमल में भी झूठ ना आए। वलकानितीन, और इताअत गुजार, जब कानित, एक इताअत गुजार वो होता है कि बस अल्लाह का हुक्म आया मान लिया, ठीक है मान लिया। एक वो होता है कानित के समेना वातोना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, इस कला लहू रब्बू अस्लिम खाला असलम तुले रब्बिल आलमीन, तो उसने कहा मैं इस्लाम लिया, मैं मती हो गया, मैं फरमा बरदा अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जो रेडी होता है ना इताअत करने के लिए, उसको कहते हैं कानित, जो यस सर करने वाला हो, जो इंतजार करे अल्लाह को हुक्म आया मैंने ये कर लेना। आप देखें हम जो पेरेंट्स जितने बैठे हैं वो बड़े अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं, हम अपने बच्चों को बात कहते हैं ना कोई, तो एक बच्चा वो होता है कि अभी बात मुंह से निकाली तो वो दौड़ा जल्दी से करने के लिए, और दूसरे बच्चे जो आजकल ज्यादातर हैं कि आप एक दफा कहते हैं, दो दफा कहते हैं, बेटा तुम्हें पहले भी ये कहा है, बेटा तुम्हें ये कहा है, और कर तो लेगा लेकिन आप कितनी दफा कहते हैं फिर करता है, वो कानित नहीं है। कानित वो है जो दौड़ के करता है, जो इशारा समझ लेता है, वो होता है कानित। तो मैं और आप कानित हैं? हम कितनी बातें सुनते हैं, कुरान की पढ़ते हैं, नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं अभी नहीं, नहीं फलां वक्त आ जाए, नहीं हाँ मुझे पता तो है लेकिन देखे ना अभी जरा, अभी मेरी एज नहीं है ये करने की, अभी शादी हो जाए, अभी फलां फंक्शन गुजर जाए, ये कानित होना नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं है कि हम बोले सब साबिरीन सादिकीन कानितीन, चलो जी आज का सबक खत्म हुआ, और मैं क्या लेके उठी, कुछ भी नहीं, जीरो, तो इसको क्या करना है? असल बात यह है कि ये जो चीजें, इनके पैमाने पे खुद को हम रख रख के देखें, मैं कितनी सबर करने वाली हूँ, बुराई पे कितना सबर करती हूँ, नेकी पे कितना जमती हूँ। अब आई हूँ क्लास में, ये नहीं कि 4 दिन का शौक है पर उसके बाद क्लास छोड़ के तो जा रहे हैं, इसके लिए भी सबर चाहिए। मैं कितना सच बोलती हूँ, अपने आप से भी बोलती हूँ या नहीं, और लोगों से कितना सच बोलती हूँ। वलमुनफिकीन, और खर्च करने वाले, खर्च किस में, खर्च तो सारे ही करते हैं लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, यानी ये भी वो कर सकता है याद रखे जो कि आखरत पे ईमान रखता हो, इसलिए कि इंसान का अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करना अल्लाह के रास्ते में जबकि उसका रिटर्न अभी नजर नहीं उसको आ रहा होता, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस वक्त उसको बिलीफ होता है ना उसका कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, जैसे मुझे किसी ने पिछले दिनों कहा कि एक बिल्डर है, उसने उनके करीब जिस स्टेट से भी वो कॉल कर रही थी, उन्होंने कहा हमारे करीब यहाँ पे एक बिल्डर ने बिड लगाई इस लैंड के लिए और दूसरे बिल्डर ने उससे डबल की बिड लगा दी, और कहते दूसरे ने ले ली वो लैंड और अब वहां पे वो घर बना रहे हैं।
भला क्यों वो डबल की बेल्ट लगाएगा? हम सब जानते हैं, सबको इसका आंसर पता है, इसलिए कि उसको पता है जो मैं घर यहाँ पे बनाऊंगा ना, वो जो बिकेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा मैं मुनाफा कमा लूंगा, इसलिए लगाया ना उसने, वरना कौन लगाएगा? वो अपने पैसे ना बचा के रख लेता, क्यों उसने इतनी बड़ी रकम लगा दी कि डबल करके लगा दी? इसी तरह जो लोग जानते हैं ना कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, वो कहता है कि मैं दुनिया में भी दूंगा तुम्हें 10 गुना करके और आखिरत में तो 70 गुना करके दूंगा जो तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे, ये कहीं मेरा मिट नहीं रहा, ये तो मुझे मिल जाना है। इसका आपको यकीन है कि वो वहां पे लगाऊंगा तो वो तो पता नहीं कल को मकान बिके या नहीं बिके, अल्लाह जाने इकोनॉमी का क्या हाल हो, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई जलजला ना आ जाए, कोई कुछ ना हो जाए, कोई सब कुछ ही मिट ना जाए, लेकिन देखो वो कितनी मतलब ट्रस्ट करके कि सब ठीक रहेगा और वो उसके अंदर लगा रहा है। हमें अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं आता कि अल्लाह ने वादा किया है वो क्यों नहीं देगा, वो देगा, ये मेरे से जा नहीं रहा, ये तो मैं 10 गुना इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लोग रिटायरमेंट प्लान के लिए कितनी वो लेते हैं ना प्लान्स के, रिटायरमेंट के लिए, ये भी मेरा रिटायरमेंट के प्लान है, ये भी फलान जगह इन्वेस्ट किया हुआ, ये भी रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, आज तो कुछ नहीं मिल रहा होता। रिटायरमेंट किसने देखी, जिंदा भी रहना है कि नहीं रिटायर होने तक, लेकिन कहते नहीं नहीं उस वक्त हमें बड़ी जरूरत होगी ना, उस वक्त तो कमाई नहीं हो सकती तो मैं रिटायरमेंट के लिए रखा। हालांकि जिंदगी हमारी कितनी मुख्तसर है, हम देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन हम करते, ये नहीं कि कोई गलत बात है, करें आप जरूर, लेकिन देखो कि हमें उसका जिस वक्त का हमें यकीन भी नहीं है कि आना भी है कि नहीं हमारी जिंदगी में रिटायरमेंट का टाइम, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट जो अल्लाह के पास होनी है कि वहां पे तो कोई कमाई हो ही नहीं सकती, वो तो सर्टेन है, वो तो यकीनी है, उसके लिए कोई प्लान नहीं, किसी प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उसके लिए नहीं लगाते। तो ये तो खर्च करने वाला वो ही है जो अल्लाह के वादों को सच जानता है, जो इसको पता है अल्लाह ने वादा किया है ये मुझे वहां पे जाके 70, 700, और अल्लाह का ये भी फरमान है कि बाज को अल्लाह बेहिसाब भी दे सकता है, और 70 गुना तो डेफिनेटली है। वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, और वो जो बख्शिश मांगने वाले हैं सहरी के वक्त खास तौर पे, देखिए वैसे तो आप बख्शीश किसी वक्त भी मांग सकते हैं, अभी भी बैठे हुए इस्तगफार कर सकते हैं, सहरी के वक्त जो लोग इस्तगफार करते हैं उनकी अल्लाह ताला ने खास तौर पे तारीफ फरमाई है। इसी तरह सूरह ज़ारियात में आप चेक करिएगा, वहां पे भी सहरी के वक्त इस्तगफार करने वालों की अल्लाह ताला ने फजीलत बताई है। यहां पे भी क्योंकि ये वो टाइम है फजर से पहले का, सब सो रहे होते हैं, सुकून होता है, इंसान फोकस कर सकता है, और अल्लाह ताला भी उस वक्त मुतवज्जे होते हैं, जो हम हदीस में हमने पढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नजूल फरमाते हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई है मेरा बंदा जो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको अता करूं, कोई है जो बख्शिश मांगने वाला है तो मैं उसको बख्श दूं, कोई है जो सवाली तो मैं उसकी मांग को पूरा करूं, यानी अल्लाह देने के लिए तैयार होता है। सिर्फ इस्तगफार ही नहीं, इनका तो गम ही इस्तगफार है ना, लेकिन जो भी आपने मांगना है, जो आपके प्रॉब्लम है, जो आपकी वरीज है, उस वक्त उठ के अल्लाह को कहें, अल्लाह देने उस वक्त देने को तैयार है, उसने अपने दर खोले होते, वो करीब होता है। तो लेकिन ये भी वही जाग सकेगा, उठ सकेगा, जो कोई टाइम पे रात को सोएगा, जब आपने पूरी रात ही इस मसरूफियत में गुजार दी कि मूवीज देख रहे हैं, अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, गपशप हो रही है, चाय के दौर चल रहे हैं, आपने रातों को दिन बना लिया, और जब फजर के करीब टाइम जाने लगता है, जो खास इसका टाइम है, उस वक्त सो जाते। अब फजर ही अक्सर लोग नहीं पढ़ते तो इस टाइम पे उठना दूर की बात है, लेकिन ये लोग देखें कि सुबहान अल्लाह, ये इस्तिगफार करते हैं सहरी के वक्त उठ के, यानी सोचें कि क्या चीज है जो उनको उनके बिस्तरों से उठा देती है, उनको गुनाहों का इतना होता होगा ना बोझ, अल्लाह मैं कुछ नहीं, अल्लाह ताला मेरे पास कुछ नहीं। देखें ये इस्तिगफार कौन लोग कर रहे हैं, जो साबिरीन हैं, जो वैसे भी दुआएं करते रहते हैं, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबा वना क़िना अज़ाब अन्नार, जो खर्च भी करते हैं, जो इताअत गुज़ार, लेकिन वो इस्तिगफार भी करते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि इनको इस्तिगफार की क्या जरूरत है, जो अच्छे भले ही लोग हैं, नहीं, इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं तुम्हारे अमल के कबूल होने की निशानी ये है, सोचें तुम्हारे अमल के कबूल होने की उन्होंने एक निशानी बताई है। आप सोचते ना मेरा अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ, نشانی یہ ہے کہ تمہیں اپنا عمل بہت حقیر نظر آئے، نا کافی نظر آئے، کم تر معلوم ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے پر ہر نیکی کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر ایک دفعہ، اور تین دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا کیا آپ نے؟ کوئی گناہ کیا؟ نہیں. لیکن اللہ، جس کو پتا چل جائے نا، اللہ تیرا حق تو بہت بڑا ہے، یا اللہ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکی، یا اللہ یہ میری نماز تو استغفار کے ہی قابل ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں ہم نے دو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنا ہے، دو نفل صحابہ کے لیے پڑھنا ہے، دو نفل تابعین. او یہ نفل تو میرے اور آپ کے بھی اگر منہ پہ نہ دے مارے جائیں تو بڑا غنیمت سمجھیں. یہ کہاں ان کے قابل ہیں؟ وہ خدا کا خوف کرو. اتنی بڑی ایک لسٹ مل گئی رمضان میں، جی یہ یہ آپ نفل پڑھے راتوں کو ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ کیا بات کرتے ہو؟ یہ نفل اپنے دیکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اپنے نفل دیکھو اور صحابہ کی شان دیکھو. یہ ان کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں یہ نفل؟ یہ تو ہمیں بھی بچانے کے قابل نہ ہو. تو یہ استغفار کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں آپ قیام اللیل کے لیے آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ کہ تہجد کے وقت بھی اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ اللہ کے آگے کس طرح. اور واقعی جو انسان نا اللہ تعالیٰ کا عظمت اس کے دل میں آ جائے، یا اللہ کا کتنا حق ہے ہمارے اوپر اس کا اندازہ ہو جائے نا، اس کو پھر اپنا عمل حقیر ہی لگتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں تو بہت بڑے کام کرتی ہوں، میں تو ایسے ہوں. نہیں، وہ کبھی تعریفیں کر ہی نہیں سکتا اپنے کاموں کی، اس کو حقیر ہی لگتے ہیں. کیا ہے ہمارے عمل اور واقعی کیا ہے؟ خود سوچے ہم کیا چیز. اللہ کے حق کو تو چھوڑیں، ہم اپنے صرف عمل کو کمپیئر ہی کر لیں نا اگر صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے، تو ان کے عملوں کے آگے بھی حقیر ہیں. حالانکہ وہ بھی اللہ کا حق نہیں ادا کر سکے، ایون انبیاء بھی اللہ کا حق نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہو سکتا ہوں. انہوں نے بھی اپنے عمل پہ مان نہیں کیا. تو اگر وہ اللہ کا حق نہیں دے سکے تو ہمارے جیسے لوگ چاہے ساری زندگیاں کچھ بھی کرتے رہے، ہم کیسے دے سکتے؟ ہم کہاں سے اپنے کسی عمل کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی عمل کسی قابل ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالی کی عظمت کا خیال کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں، تو پھر ہم واقعی صرف استغفار ہی کرتے رہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے آپ. اللہ تعالیٰ ان آیات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
ایک بات یہاں پہ تلاوت سنتے ہوئے میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں یہاں پہ کہا گیا ہے انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے کیا ہے؟ پہنچا دینا. کیا ہے؟ پہنچا دینا. صرف آپ کے ذمے کسی کو منوانا نہیں ہے, کسی کے ساتھ بحثیں کرنا نہیں ہے, کسی کو اسلام کے اندر لا کے ہی چھوڑنا ہے, یہ نہیں ہے, کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے. وہ اللہ کا کام ہے, آپ کا کام پہنچا دینا. لیکن کیا ہم نے پہنچانے کا حق ادا کیا؟ آپ دیکھیں یہ کرونا وائرس ہے نا, یہ بتائیں اگر آپ کو پتا چل جائے کسی کے پاس اس کی دوائی ہے, کوئی جانتا ہے اس کا کوئی نسخہ ہے, لیکن وہ کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہتا, تو آپ کیا کہیں گے ایسے آدمی کو؟ ظالم, سیلفش, بہت برا کہیں گے, خود غرضی ہے. یہ تو صرف ایک بیماری کے علاج کی دوا اس نے چھپا لی, تو ہم اتنا غصہ کریں گے؟ اور سوچیں کہ اٹرنل لائف جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس سے اس میں نجات کا, اس میں عذاب سے بچنے کا نسخہ آپ کے پاس اور میرے پاس ہے, اور ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے اور کسی کو شیئر نہیں کریں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. سمجھنی چاہیے اپنی ذمہ داری, کیونکہ انسانیت پکار رہی ہے, انسانیت کہتی ہے ہم تک پہنچاؤ, پہنچانے والے سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.